દ્રષ્ટિમાં હાહાકાર મચર્યો હૈ. ગવાહ કી સેવા આપણી શક્તિ કે અનુસાર હમ લોકોને સબને કરવી ચાહીએ. દેખો હમ લોગ એક પ્રકાર દૂધ પીવે ઓર સેવા નહીં કરેં, એક પ્રકાર સે હમારી કૃતજ્ઞતા હૈ કે ઉનસે હમ ઇતના લાભ ઉઠાવાને બદલે હમ કુછ ભી નહીં કરેં. તો વાસ્તવ મેં તો ગવાહ કી સેવા કે વિષય મેં હમ કહેને કે અધિકારી ભી નહીં. ક્યુ નહીં અધિકારી હૈ કે જૈસે આપ લોગ ખૂબ દૂધ પીતે હમ ભી દૂધ પીતે, અર સેવા આપ ભી નહીં કરતે, મેરે સે ભી નહીં બનતી માતી. તો ઇસ કારણ સે થી તો મેં અધિકારી નહીં હું. તો ઇસલિયે એક પ્રકાર સે થી જો અચ્છે જો પુરુષ હૈ અર જો ગવાહ કી સેવા જિન્હોને કી હૈ ઉનકો શાસ્ત્ર કે બીચ કે માં આપણે શિક્ષા મિલ રહી હૈ, ઉનકો આધાર બના કરકે હમ લોગો કો સેવા કરની ચાહીએ. આપ લોગો કો ભી ઓર મુઝકો ભી ખ્યાલ કરકે દેખતે હૈ પૂર્વ કે જમાને કો તો લાખા ગવાહ જો હૈ સો નંદ ઉપનંદ કે થી, એક લાખ કરીબ ગવાહ જો હૈ સો વિરાટ કે થી. ઓર ઇસ સમય કે બીચ કે વહાં ગવાહ બહુત મારી જા રહી. દુઃખ કી બાત ક્યા હૈ કે જહાં ગવાહ કી કતલ હોતી હૈ ગવર્નમેન્ટ કી કહીં કહીં યા કાનૂન હૈ કે 14 વર્ષ કે નીચે કી ગવાહ નહીં મારી જાવે, કિંતુ યા કાનૂન એક ગવર્નમેન્ટ કે કાગજો મેં હૈ. ને તો ગવર્નમેન્ટ ઉસકો સંભાળતે હૈ, જનતા કે બીચ કે વહાં ઉત્તેજના ન હોય ઇસલિયે યા કાનૂન લોગો કો દિખાને કે વાસ્તે બના રહે, કામ મેં લેને કે લિયે નહીં, ક્યોંકિ કામ મેં લાઈ નહીં જા રહી. તો છોટે બાદશાહ બાછી ભી મારે જાતે, ક્યોંકિ બાદશાહ બાછી છોટે જો મારે જાવે ઉનકા જો મુલાયમ જો ચમડા હોતા હૈ વો ચમડા બઢિયા હોતા હૈ, અર ગૌ અપને આપ સે મર જાતી હૈ ઉનકા જો ચમડા હૈ વો કઠોર હો જાતા હૈ, ઉનકે જૂતે ભી જો બનતે હૈ તો ખરાબ જૂતે બનતે હૈ જિસકી કિંમત 3 રૂપિયા 4 રૂપિયા. અર જો જીતી હુઈ ગૌ કા ચમડા ઉતાર્યા જાવે યા બચ્ચી ઓર બાચ્ચે કા ચમડા ઉતાર્યા જાવે ઉસકા ચમડા મુલાયમ હોતા હૈ. તો જ્યાદા જો બઢિયા ચમડા મુલાયમ હોતા હૈ વો તો ટોપી કે માં લગતા હૈ, ઘડી કે માં લગતા હૈ હાથ મેં, ઓર સમજો કે યે બઢિયા બઢિયા કામો મેં લગતા હૈ. કે બૂટ જીસકો જૂતા કહેતે બનતે જીસકા દામ 15 રૂપિયા 20 રૂપિયા એક રૂપિયા હોતા હૈ, ઉન ગૌ કી કિસ પ્રકાર સે દશા હોતી હૈ જો સુની ગઈ હૈ. અર દેવસાજી આદિ જો ગયે થે કલકત્તે કસાઈ ખાને મેં ઉન્હોને જાકે કે દશા દેખી હૈ, ઉનકી કહી ભી બાત મેં કહેતા હું મને અપને આંખો સે દેખી નહીં કે ગૌ કે ઉપર ગરમ પાણી છિડકા જાતા હૈ કે જિસસે ઉસકા ચમડા મુલાયમ હો જાવે, અર ઉસ પાણી છિડક કર કરકે ફિર ઉસે લાઠીઓ સે ગૌ કો મારી જાતી હૈ કે ચમડા ફૂલ જાવે ઓર એક પ્રકાર સે વો ખૂબ મુલાયમ હો જાવે. ઉસકે બાદ મેં ગૌ જીતી રહેતી હૈ ઉસકા ચમડા ઉતાર્યા જાતા હૈ, ઉતારતી હૈ વો ધુલતી રહે તરબતી રહેતી હૈ ફિર તરબ તરબ કે મર જાતી હૈ. કોઈ કસાઈ ખાના કે બીચ કે વાત સમજો કે એક પ્રકાર સે ગૌ કો માર્કર ચમડા ઉતાર્યા જાતા હૈ એસી ભી સુની જાતી હૈ, અર કોઈ મેં એસી સુની જાતી હૈ કે પ્રથમ ઉસકા ચમડા ઉતાર કરકે ફિર વો મર જાતી હૈ ને ઉસકી કતલ કર દી જાતી હૈ, ઓર ચમડા પહેલા ઉતાર લિયા જાતા હૈ જિસે વો ચમડા જ્યાદા મુલાયમ રહે. ઉસ ચમડે કે જો જૂતે બનતે હૈ એક નંબર પાપ ઉસ દો હી આદમીઓ કો લગે, યું તો 6 પાપ કે ભાગી હોતે હૈ કિંતુ એક તો જો એક પ્રકાર સે ગૌ કો મારતા હૈ ઉસકો દૂસરે જિસ ઉદ્દેશ સે મારતા હૈ ચમડે કે લિયે વો ચમડા જો કામ મેં લાતા હૈ ઉસકો, જૈસે માંસ જો હૈ ગૌ કા જો ગૌ કો મારતા હત્યા કરતા હૈ ઉસકો સમજો ગૌ હત્યા લગતી હૈ, અર ફિર જો ગૌ કા માંસ ખાતા હૈ ઉસકો ગૌ હત્યા લગતી હૈ. તો ગૌ કા જો માંસ હૈ ગૌ કા જો ખૂન પીના હૈ ગૌ કા જો ચમડે કા જૂતા પહેરના હૈ યે સભી પાપ કે ભાગી હોતી હૈ. मनुष्य के विषय में मनु जी ने ये बात दिखलाई है कि समझो कि हिंसा करने वाला और उसमें सम्मति देने वाला और बिक्री करने वाला और रांधने वाला और खाने वाला, ये सभी समान भाव से पाप के भागी होते हैं। तो यह बात एक प्रकार से सुनकर करके आप लोगों की यदि रुचि हो तो यह तो आज ही प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि हम लोग जो है समझो कि होटलों के बीच में गऊ का मांस रांधा जाता है, तो एक प्रकार से उस होटलों के बीच के मां समझो कि जाने की सोगन लेनी चाहिए कि भी हम कभी उस होटलों में नहीं जाएंगे। कई आदमी कहते हैं कि होटलों में तो जाते हैं किंतु मांस नहीं खाते। हम कहते हैं मांस चाहे मैं खाओ किंतु उसका रस जो है दाल में भात में किसी भी प्रकार से वही चमचा है वही हाथ है वही संसार है उसके परमाणु तो आ ही जाते हैं गऊ के। तो ये अपने होटलों के बीच के वहां जाने की शपथ लेने की कभी, अरे कोई मामूली बात है क्या? होटल में नहीं जाने से मर तो नहीं जाएंगे, हम लोग भी तो संसार में जीते हुए फिर रहे हैं, कोई मर नहीं गए। तो यह एक प्रकार से मामूली बात है। तो गंगा जी के ऊपर आकर के हम लोगों को कम से कम या तो मन में प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि किसी होटल के वहां जाकर के भोजन नहीं, यह तो मामूली बात है। कम से कम उत्तम बात तो यह है कि बाजार की कोई भी चीज नहीं खानी, यानी कोई खुबचा है या कोई बाजार की मिठाई है पान है चाह है, क्यों बाजार की चीज सभी अपवित्र होती है, उसके वहां घी अपवित्र चीनी अपवित्र जड़ अपवित्र सभी चीज अपवित्र होती है। किंतु यदि एक प्रकार से थी इतना त्याग नहीं हो सके तो कम से कम यह त्याग कर लेना चाहिए कि होटलों के बीच के माँ समझो कि मुसलमान लोग खामसामान लोग ये सब जो होते हैं चमार भी होते हैं, वहां कोई जाति का भेद नहीं, वहां कोई शुद्धि नहीं, वहां कोई एक प्रकार से समझो कि अंडे रहते हैं मांस रहते हैं मदरा रहते हैं जिसका नाम उच्चारण करने से मनुष्य को पाप लगता है। मैं उनका नाम उच्चारण करता हूं तो निषेध के लिए करता हूं, इसलिए शायद पाप नहीं लगे। तो ये तो एक सोगनी ले रही चाहिए कि किसी भी होटल के बीच के मां नहीं जाऊं। दूसरी बात यह कि एक उत्तम बात तो यह है कि चमड़ो काम में जानो ही नहीं, क्योंकि वो मालूम नहीं पड़े कि भाई आपने मरी गऊ है मारेरी गऊ है, पहला मार कर फिर चमड़ो उतारे है या चमड़ो उतार के फिर मारी गई है, ये मालूम भी नहीं पड़े। पहला चमड़ो उतारे या बाद में चमड़ो उतारे, बाद में चमड़ो उतारे तो भी पाप है, पहला चमड़ो उतार कर मारे तो और ज्यादा पाप है। तो एक प्रकार से चमड़ो काम में नहीं लाना चाहिए। और यदि चमड़ो काम में लाओ अर्थात यह खातरी हुए कि खादी प्रतिष्ठान को चमड़ो है मारी हुई गऊ को नहीं अपने मौत से मरी हुई गऊ को चमड़ो है, तो उसके वास्ते हमारा इतना विरोध नहीं कि उसको आप काम में ला सकते हो। जब आपको पूरी खातरी है कि भाई ये चमड़ो तो मरी हुई गाय को है, हिंसा को नहीं इसमें, किंतु ये तो जरूरी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जो गाय चमड़े के लिए मांस के लिए मारी जाती है उन्हें गायों का चमड़े का जूता वगैरह एक काम में नहीं है। तो गाय का चमड़े का जूता को त्याग कर लो और होटल के मां जाने को त्याग कर कि एक प्रकार से किसी भी होटल के मां जाकर होटल की चीज मंगा कर या होटल में जाकर के या चलती हुई रेल के मां होटल की चीज मंगा करके हम खाएं, तो ये दो बात के यदि आपके जीते ना तो ये एकदम सदा के वास्ते त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कितने वर्ष जियोगे आंख में तो मरोगी। तो एक प्रकार से ऐसी कलंकित तो होकर के संसार से हम क्यों जावे, यो एक प्रकार से अपने कुल के कलंक लगा करके जाति का कलंक लगा करके देश का कलंक लगा करके जो ये प्रसिद्धि है कि एक प्रकार से थी मारवाड़ देश के लोग अहिंसक होते हैं, वे मांस नहीं खाते, वे एक प्रकार से गो हिंसा नहीं करते, ये प्रसिद्धि है संसार के बीच के वहां। तो हमारे कुल के वहां बहुत से आदमी समझो कि हमारे जाति में हमारे देश में हमारे भाइयों में हो गए जो जाति के कलंक लगाने वाले कुल के कलंक लगाने वाले हमारे देश के मारवाड़ देश के कलंक लगाने वाले ऐसे जो पैदा हो गए। तो ऐसी लिए नहीं ऐसी बात कहने की नहीं हुआ करती। तो इसलिए आप यदि सब ठीक इसको समझो तो परमात्मा की जय बोल करके इसको स्वीकृति दो और इसकी प्रतिज्ञा स्वीकार करो। सियावर राम मोर मुक्त बंसी दूसरी बात यह कही जाती है या अपने यथाशक्ति कर सकते हो कि हम लोग दूध पीते हैं इसलिए हरेक प्रकार से गऊ की अपने को सेवा करनी चाहिए। जहां कहीं एक प्रकार से गऊ को आंदोलन होवे तो आज ये आंदोलन संसार में चल रहे है कि भी सब जगह गौ बंद हो जानी चाहिए। उसके बाद दूसरी पार्टी वाले भाई कहते हैं कि यदि एक प्रकार से गौ बिल्कुल बंद हो जाएगी तो ये बूढ़ी जो गाय है ये एक प्रकार से थी अपने घास और को पैदा करने वालों है
उसके अनुसार संसार में चारों पैदा करने वालों को भगवान मौजूद है। अब भगवान कहीं मरे नहीं है तो इस वास्ते उनके भरोसे पर रहना चाहिए कि आप गौ की पालन करते हो। फिर तो आप एक दिन यो सवाल पैदा करोगे कि जो बूढ़े बूढ़े आदमी हो गए हैं उनको मार डालो क्योंकि निकम्मे हो गए वह काम तो कुछ करते नहीं एक प्रकार से थी वह अन्न खा जाते हैं तो फिर जवान आदमी का अन्न खा जाओगे तो जवान आदमी मरेंगे। आज कोई जवान आदमी समझो बूढ़ों को अन्न खिलाने से मरे कोई आज तक तो ये सब बेकूफी है मूर्खता है बेसमझ की बात है। इतने जंगल हमारे हिंदुस्तान के वहां पड़े हैं कि लाखों गवां जंगलों में रह करके अपना जीवन निर्वाह कर सकती है घास तर के जी सकती है। उन गवों को हम जंगलों में छोड़ दे हुए तो भी वो अपने समझो कि पूरी आयु पाकर ही मरेगी जंगल में चरेगी। दूसरी बात यह है कि उन गवों को हम खेतों के मार करके चरावे तो आप हिसाब लगा करके देख लो कि गऊ का जो पोटा होता है गोबर करती है गोमूत करती है उससे जो खेती की जो वृद्धि होती है गोबर गोमूत से वो खेती वहां अधिक पैदा हो जाती है उसके। तो गऊ जो खाती है चारा चरती है उससे ज्यादा निबज पैदा हो जाती है। समझो कि एक मण खाद दी जाती है तो उससे कई मण अनाज पैदा होता है कई मण घास पैदा होता है एक मण खाद का। तो गऊ यदि समझो कि एक मण पोटा करे और वो एक समझो कि दो मण भी चारों चरे तो वास्तव के माँ अपने और भी अधिक चारों और घास और अन्न पैदा हो तो वो जो कुछ खाती है उसके अनुसार वो अपने खाद पैदा कर देती है। तीसरी बात यह है कि स्वाभाविक एक प्रकार से थी समझो कि आपने भगवान है जी का वहां से जो प्रखा करते हैं तो वर्षा के बीच के माँ जितने संसार में प्राणी है पशु पक्षी कीट पतंग भगवान सबके लिए सोच समझ करके वर्षा और अन्न की पैदावार उपज करते हैं। हिसाब लगा करके कुछ कुछ जितना आवश्यकता होती है उसे अधिक पैदा करते हैं तो फिर हमारे को क्या चिंता है। आज यदि वर्षा न हो गए तो क्या आप समझो जल से खेती करके जी सकते हैं। आज यदि एक प्रकार से थी तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपने संसार के वहां जो कुछ काम हो रहा है सब भगवान की नजर में हो रहा है ऐसा सोच करके भगवान पर इतना तो भरोसा करना चाहिए कि जो पैदा करता है वही जिलाता है और वही समय के ऊपर उसको समाप्त करता है तो हम बीच में पड़कर क्यों पंचायती करें। तो हर एक प्रकार से हमको गऊ की रक्षा करनी चाहिए। ये तो एक प्रकार से हम लोगों को तो केवल निमित्त बनना है करने वाले तो सब भगवान है हमारा करे होता क्या है। भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं कि निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन हे सभ्य साची अर्जुन तू निमित्त मात्र हो जा रीते भी त्वांग न भविष्यन्ति सर्वे के जितने जो योद्धा है पहला से ही सब मेरे करके मारे हुए और तुम्हारे बिना तू नहीं भी मारेगा तो भी सब मरेंगे केवल मैं तो तुम्हारे को निमित्त बनाता हूं। तो भगवान हम लोगों को केवल निमित्त बनाते हैं तो निमित्त बन जाना चाहिए करने वाले तो सब भगवान है तो इतना निमित्त बन जाना चाहिए कि कोई भी सवाल उठे गवा के विषय के मां तो एक सौ सैतीस में शामिल रहना चाहिए कि गवा अपने हिंदुस्तान में अपने बद नहीं होनी चाहिए। महात्मा जो गांधी जी जो हैं जिस वक्त स्वराज नहीं मिला था उस समय में उन्होंने ये घोषणा की थी कि ये बात पहले आई थी कि भाई एक प्रकार से हिंदुस्तान में गवा कटनी बंद होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि
हिंदुस्तान के बीच के मन जो है ये सवाल ठीक है, और मेरी भी इच्छा है, और मैं जो स्वराज के लिए चेष्टा करता हूं तो मेरा प्रधान जो सवाल गांव के लिए है, तो स्वराज अपने हाथ में आ जावे तो उसके बाद के बीच के वहां गांव का विषय उठावेंगे। और मेरी ये है इच्छा कि मैं इसको बंद कर दूंगा। संभव है कि आज मैं जीते तो शायद एक अपनी बात को याद करके के और उस प्रकार से वे करते, किंतु अब रे तो है नहीं, अब किसको कहें। तो इसलिए एक प्रकार से उनको जो आदेश हो और उनको जो उद्देश्य हो कि हिंदुस्तान में स्वराज पाने को, वो स्वराज तो मिल गयो, अब उसकी सिद्धि करने के लिए हम लोगों को चेष्टा करनी चाहिए। तो जहां कहीं महात्मा गांधी की आत्मा होगी तो वो प्रसन्न होगी, बोले वाह, एक प्रकार से जो काम मैं नहीं की हो वो काम हमारे पिछु से। तो अब आपने इस विषय पर खूब ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश से गाया को कटनो एकदम बंद हो जाए। तो उसके लिए समझो बहुत से उपाय, तो एक तो गांव की वृद्धि को उपाय वो भी करना चाहिए, और एक गवां जो न मारी जाए बेमौत जो गांव मारी जाती है वो बंद हो। जिस समय के बीच के मां मनुष्य इस प्रकार से बेमौत मारे जाते थे, राक्षस लोग जो है सो मनुष्य को एक प्रकार से मारकर उसके मांस को खा जाते थे और हड्डियों की ढेरी चुन देते थे, उस हड्डियों की ढेरी को देख करके और भगवान के आंखों में आंसू आ गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसलिए प्रतिज्ञा की थी कि निश्चर ही न करूं मैं ये भुज उठाए प्रण की, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठा करके यह प्रतिज्ञा करी थी कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा, और सबके आश्रम में जाकर के उन्होंने सुख दिया था। उस समय में तो समझो ऋषि मुनि है उनको एक प्रकार से राक्षस लोग खा जाया करते थे, और आजकल के मनुष्य राक्षस हो रहे हैं, वे गांवों को खा करके हाड़ों के ढेरी से चारों तरफ लगा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के मां समझो कि आपने, और ज्यादा यदि अत्याचार हुए तो भगवान अवतार लेते हैं, और नहीं तो संसार के बीच के मां बहुत से जो भगवान के भक्त होते हैं उनके मां वे प्रेरणा करते हैं और वे एक प्रकार से वो काम कर लेते हैं, तो भगवान को आनंद नहीं पड़ता। तो हम लोग इस सब भगवान के भक्त बन करके और बीड़ा उठा करके इस काम को करें तो एक प्रकार से भगवान की मदद पा करके हम लोग भी कर सकते हैं। जैसे अर्जुन भगवान की मदद पा करके और युद्ध के बीच के मां जो मारे हुए थे उनको भी मार डाला, तो इसी प्रकार से काम तो करने वाले भगवान है, हम लोग तो केवल निमित्त मात्र बनते हैं, तो इसलिए निमित्त मात्र तो कम से कम बनना ही चाहिए। तो एक तो हर एक भाइयों को अपनी शक्ति के अनुसार, कोई अपनी शक्ति हुए तो समझो कि गोचर भूमि छोड़नी चाहिए, कोई भाई की आशक्ति नहीं हो तो घर के मां गवां रखनी चाहिए, एक दो गऊ भी रखनी चाहिए, इतनी भी शक्ति नहीं होए तो यो ही रखे कि भाई हम गऊ का ही है तो अपना दूध पिएंगे, भैंस का नहीं पिएंगे, इससे भी गऊ को मदद मिलेगी, और जो कुछ भी एक प्रकार से कर सके तो गऊ की सेवा के मां हर एक प्रकार से मदद करनी चाहिए। गोचर भूमि जो छोड़ना है ये भी गऊ की बड़ी भारी सेवा है, और गऊ को घर में रखना, उनकी सेवा करना, ये तो एक नंबर है ही। और समझो कि हर एक प्रकार से थी हम लोगों को गऊ की सेवा करनी चाहिए। जैसे समझो कि गौशाला है और वहां भी एक प्रकार से अपने शक्ति अनुसार सब भाई लोग मदद करते ही हैं, उसे और विशेष मदद करनी चाहिए। कहीं भी गौशाला हुए आजकल के समय के बीच के वहां जो अपने गौ दान दी जाती है वो गौ दान ब्राह्मणों को देनी तो बहुत उत्तम है ही, किंतु यदि कोई ब्राह्मण एक प्रकार से गऊ लेकर करके और उसको पाल नहीं कर सके और बिक्री कर देवे और किसी भी प्रकार से वह कसाई का हाथ चली जावे तो वो ब्राह्मण भी नरक में जावे और गऊ को देने वाला दाता भी ऐसा नरक में, यदि कसाई के हाथ चली जाए तो। अगर समझो यदि ब्राह्मण अपने घर में रख करके उसको पालन करे तब तो उनकी महिमा शास्त्रों में लिखी है गऊ दान की। ऐसी परिस्थिति के बीच के मां समझो कि आजकल के समय में नहीं हो तो गऊ अपने दे, नहीं हो तो गऊशाला में भेज देवे, अच्छा समझो कि ऋषिकेश में गौशाला है और उससे अपन लोगों ने दूध मिले है दोनों समय के बीच के मां, तो दूध का एक प्रकार से वो जो जमादार अपना लोग ला रहे उसके सुना एक प्रकार से दसाना का दाम लेवे, जमादार का रुपया वही लोग देवे जो दसाना जी के अपना दाम देवा, और आठाना में जो अपना दूध मंगावा बैंक अपना जमादार काम करे, तो दुआना जमादार के खर्चो लग जाए, तो दसाना शेर अपन ये दूध अब ये मिल रहे। अब सोचने की बात है कि अपन लोग बहुत यहाँ आ गया, चार आदमी जंगल में आकर के ठहर गया, तब ये दसाना दाम है, और नहीं तो और भी कम दाम में दूध मिल सके, तो वो जो दूध एक प्रकार से उसका पैसा कम मिले तो गऊ के दूध का अधिक दाम दे वह भी गऊ की सेवा है। और शेर अपना एक प्रकार से आजकल की तो बहुत सी गौशाला तंदर से ही चले, प्राय करके यहाँ की ऋषिकेश की गौशाला के भाई लोग तो यही कहते हैं कि भी तुम्हारे सत्संग वाले भाई लोग आते हैं ना उनके ही सेवा से ये चले, नहीं तो गौशाला उड़ जाती। मंगला जी बड़े उत्कोटी के एक महात्मा हुए थे और उनके नाम से वो गौशाला है और हम लोग सभी उसके मेंबर हैं, तो इसलिए ये रखते हैं कि भाई एक प्रकार से या गौशाला कायम रहे किसी भी प्रकार से या तो ठीक है। तो साल के मंथ 3-4 हजार रुपया एक प्रकार से उसको यहाँ से अपने सहायता मिल जावे है, इस कारण से वह वर्षों से चल रही है और उससे अपन अपनी सेवा हो रही है, अपने दूध मिल रही है, नहीं इकट्ठो दूध कहाँ मिले तुम। तो एक प्रकार से थी अपन इसी प्रकार से समझो कि कलकत्ते में भाई लोग जो रहते हैं उनको कलकत्ते की पिंजरापोल की सेवा करनी चाहिए, और जो जहाँ ही रहे सभी जगह पिंजरापोल कहीं गौशाला है ही तो उसकी सेवा करनी भी गऊ की सेवा है, उसमें हरेक प्रकार से दूध की वृद्धि करनी चाहिए और हरेक प्रकार से जो ठाली गऊ है बूढ़ी गऊ है उनकी भी सेवा करनी चाहिए। इस विषय में कितने भाई तो कहते हैं कि गौशालाओं के बीच के वहां जो ठाली गऊ है उनकी माने बूढ़ी गऊ है निकम्मी गऊ है उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको रखनी चाहिए, दूध वाली जो गऊ है वो एक बेच देनी चाहिए दूसरों को दे देनी चाहिए। कितने ये कहते हैं कि नहीं एक प्रकार से थी आपने दोनों प्रकार की गऊ की सेवा करनी चाहिए, और कितने कहते हैं कि नहीं डायरी फार्म खोलने चाहिए जो दूध वाली गऊ की सेवा करनी चाहिए, थालर गऊ जो है ये मरे तो मर जानी चाहिए एक प्रकार से थी। इस प्रकार से थी तीन प्रकार की आवाज आती है। इसमें हमारे को तो ये बात अच्छी मालूम देती है कि भाई सभी गौ की सेवा करनी, चाहे बूढ़ी हो चाहे जवान हो, जवान की सेवा दूध के लिए करनी, बूढ़ी की सेवा धर्म के लिए करनी। जैसे अपने घर के मां जितने मनुष्य होते हैं बूढ़े होते हैं जवान होते हैं तो सबकी सेवा करना कर्तव्य है। बूढ़ों की सेवा यदि एक प्रकार से उन्होंने हमारी सेवा की, एक प्रकार से हमारी सेवा करते करते बूढ़े हो गए, आज हम ये समझें कि ये बूढ़े जल्दी जल्दी मर जावे तो ये हमारी जो भावना है हमारी बुरी नीयत है। हमको तो ये भाव रखना चाहिए कि हमारे बूढ़े माता पिता 100 वर्ष तक जीवें, हमारी भावना से कुछ जीवेंगे नहीं, हम इच्छा करेंगे और अधिक वर्ष जीवन तो जीवेंगे नहीं, हम ये इच्छा करेंगे कल ही मर जाए तो मरेंगे नहीं। हमारी इच्छा से न तो कोई मरेगा और न कोई जीवेगा, अपनी इच्छा करके के समझो कि अपने अपराध कर लो तो अपने अपराध को करना, अपना तो बढ़िया से बढ़िया इच्छा रखनी चाहिए कि भाई सब गवां की सेवा होनी चाहिए, जीव मात्र की सेवा होनी चाहिए, गवां की तो फिर बात ही क्या है। तो हर एक प्रकार से गवां की सेवा करनी चाहिए। राजा दलीप ने गऊ की सेवा कर करके की और समझो कि आपने रघु को प्राप्त किया और जिसके नाम से संसार के वहां रघु वंश प्रसिद्ध हुआ, जिसके वंश में भगवान ने अवतार लिया। वो राजा दलीप कैसे गऊ की सेवा करते हैं, गऊ बैठती है तो बैठता है, उड़ती है तो उड़ता है, साथ में चलता है, गऊ को घास खिलाकर और अन्न खाता है, गऊ को जल पिलाकर जल पीता है, बस गऊ उसके ईश्वर के तुल हो रही है, ईश्वर की जैसे कोई सेवा करे ऐसे उनकी गऊ की सेवा करता है। आखिर में एक दिन ऐसा हुआ कि वन के बीच के वहां एक गऊ के ऊपर सिंह है सो आकर के आपने समझो की झपका और गऊ चिल्लाई, राजा दौड़कर गया देखे तो सिंह उस पर आक्रमण कर रहा है, तो राजा ने उसको सिंह को मारने के वास्ते धनुष बाण उठाए किंतु राजा का धनुष बाण कुछ भी काम नहीं किया, वो धनुष बाण चलाया नहीं गया। तो राजा ने सोचा क्या बात है, फिर सिंह ने कहा कि मैं एक प्रकार से यहाँ एक शिव जी का गण हूँ और एक प्रकार से मुझको कोई नहीं मार सकता है। तो राजा ने कहा कि महाराज आप इस गऊ को नहीं मार करके मुझको मार, आपको तो मन सी चाहिए ना, तो मुझको आप खा लो गऊ को छोड़ दो। उसने कहा कि हे राजन तुम राजा होकर के
और गऊ के बदले में अपने को क्यों दे रहे हो? वशिष्ठ को ऐसी ऐसी और कई गऊ आप दे सकते हो एक गऊ के बदले में, और तुम्हारा राजा का शरीर है इसका कितना मूल्य है और गऊ के शरीर का क्या मूल्य है? तो उसने कहा कि आपका कहना ठीक है, किंतु मेरा धर्म है, मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि गऊ को बचाकर अपने प्राणों को देकर के भी गऊ को बचाना सके। तो बोलो ठीक है, जब ऐसे है तो धर्म का पालन करता है तो मैं तुम्हारे ऊपर आता हूं, तो गऊ को छोड़ करके तुम सावधान हो जाओ। तो राजा अपने ध्यान में मस्त हो गई, ध्यान में मस्त हुए भगवान के ध्यान में, अब एक प्रकार से वो सिंह झपटने की तैयारी हुई, किंतु सिंह झपटता नहीं है। राजा ने आंख खोलकर देखा तो सिंह नहीं है, गा खरी। गा ने कहा कि राजा दिलीप, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं सिंह बन करके तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, और सिंह सांग यहां कोई नहीं है, मैं तुम्हारे पर खुश हो गई, तू जो चाहता है जो तेरी इच्छा वो पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारे लड़का पैदा होगा और बहुत बलवान होगा और नाविक होगा संसार के वहां विख्यात। तो आप ख्याल करना चाहिए कि राजा दिलीप ने तो अपने प्राणों की आहुति दे दी थी गऊ के लिए। इसी प्रकार से बहुत सी कथाएं आती है, उसका मैं विस्तार करूंगा तो इसी व्याख्यान में समय अधिक लग जाएगा और दूसरी बातें मुझको कहनी है, इसलिए इसको मैं यहां रोक देता हूं। अब दूसरी बात आपको यह कहनी है कि इस समय के बीच के मां अपना जो देश है ये रसातल को जा रहा है, यानी इसकी अधोगति हो रही है। हमारी समाज के बीच के मां जो है, समझो कि आपने दहेज की प्रथा बहुत खराब बढ़ गई, बहुत खराब बढ़ गई है। यदि आप उसकी बातों को याद करोगे तो आपकी आंखों में आंसू आने लगेंगे, ऐसी दशा हो रही। हमने देखा है, मैं थोड़ा दिन के पूर्व में जब 1.5 साल के पूर्व में कलकत्ता गया था, उस समय के बीच के मां हंस पोखरी की जगह के बीच के मां मैंने देखा कि एक पुरुष एक स्त्री एक उसकी कन्या, ये 320 खा करके मर गए थे। क्यों मर गए थे? कि लड़की बड़ी हो गई थी, 16 वर्ष की कोई हो गई थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके माता पिता बहुत चेष्टा की किंतु उनके पास में रुपये नहीं थे, और लड़के वाला के बिना रुपयों के बिना मैं इसे के साथ में शादी नहीं करूंगा। लड़का लड़के वाले कहते हैं हम अपने लड़के के साथ में शादी नहीं करेंगे, और उनके पास में रुपये थे नहीं, तो दुखी होकर के एक प्रकार से अपने जीवन की समाप्ति कर दी, और वे विष खा करके तीनों मर गई। 4-5 दिन के बाद उनकी लाशें सब मिली, कितनी दुखी बात। आजकल भी ऐसी घटना छापों में कभी कभी आई जाती है कि अमुक लड़की अपने शरीर में किरासन छिड़ करके आग लगा करके जल गई, अपने माता पिता के दुख को देख करके। माता पिता रोते हैं, लड़की जब भी शादी नहीं होती तो माता पिता रोते हैं। मैं आपको नाम तो क्या बताऊं, लॉन्ग डाउन से अभी हमारे पास स्थिति आई, एक भाई ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं अपनी कन्या के विवाह के वास्ते बहुत ही आतुर हूं, कोई लड़का मिला नहीं, मैंने एक दो चेष्टा करी किंतु विद नहीं बैठी। तो एक प्रकार से थी वो बेचारा लाचार हो गया, कहता मैं लड़की को ये उपदेश देता हूं कि बेटी तुम आज ही उन पर्यंत अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर। एक अमरनाथ नाम का ब्राह्मण यहाँ आया था यहीं, और उस वो आपकी लड़की ने ये शिक्षा दी कि तू बेटी नेम ले ले कि मैं तो आज ही उन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, जाकर उसको नेम दिलाया एक प्रकार से। तो ये बहुत बुरी बात मैं समझता हूँ, क्योंकि उस लड़की से मैं बात करी खुद ने, मैं कहा कि भाई क्या तू इस बात का ब्रह्मचर्य का पालन करने का नेम लिया? तो वही भाई ने कहा कि हाँ मैं लिया। ऐसे यहाँ समझो कि नेम दिया क्यों लिया, कि मेरे बाप ने यह बात कही कि मेरे पास विवाह करने के वास्ते रुपया नहीं है, मेरे भीतर के मां कोई त्याग नहीं है, वैराग नहीं है, मैं तो एक प्रकार से विवाह करने के वास्ते राजी हूं किंतु विवाह होता नहीं है, इस कारण से मैंने ये नेम दिया। ये यहाँ की बात क्या परमात्मा, तो कितनी दुख की बात है कि बहुत से लोग रोते हैं, उनकी मार होती है कि लड़की को कुंवारी देख करके कि उसकी आंखों में आंसू आते हैं। एक गरीब भाई है, उसके 4 लड़कियां होगी, 5 लड़कियां होगी, वो बताओ कैसे विवाह करेगा, अपने आप को बिक्री भी कर दे तो लड़कियों का विवाह नहीं कर सकता, न तो उसको उधारा मिले और न उसको समझो कि मांगा मिले। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये 3 जातियों के बीच में तो बहुत ही मुश्किल हो रही समय के मां, शूद्र जाति के मां वो मुश्किल नहीं है। क्यों? शुद्ध जाति के बीच के बाद तो समझो कि यदि लड़की विधवा भी हो जावे तो दूसरा विवाह हो जावे, और लड़की दूसरा विवाह कर लेवे, और समझो कि यूं भी मुश्किल नहीं है कि उनके यह कोई ऐसी आपत्ति की बात इतनी नहीं है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन जाति के बीच के माँ तो बहुत ही मुश्किल है, और उनके बीच के माँ भी समझो कि ब्राह्मण जो है वे किसी से सहायता मांग भी सकते हैं, और वैश्य और क्षत्रिय उनकी तो ऐसी दशा है कि उनको वंश नष्ट हो तो जा रही है और कोई उपाय नहीं। ऐसी परिस्थिति के बीच के माँ कितनी दुख की बात है। तो हरेक माता बहनों को भाइयों को ये मन के माँ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अपना लड़का होगा तो उसका हम दहेज नहीं लेंगे। कम से कम ये तो त्याग करना चाहिए कि अपने लड़का है तो उसका हम दहेज नहीं लेंगे और कछु नहीं,